Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक राजा थे, उनके तीन मंत्री थे। राजा ने तीनों को एक एक बैग दिया और कहा कि बगीचे में जाओ और वहां से अच्छे अच्छे फल इकट्ठे करो। अब तीनों मंत्री चले गए वहां पे। पहले मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे फल इकट्ठे करूं, और वो चुन चुन के अच्छे अच्छे फल बैग में इकट्ठे करने लगे। दूसरे मंत्री ने सोचा कि चलो राजा देखेंगे थोड़ी, इसलिए जैसे भी हैं, अच्छे फल हैं, कच्चे फल हैं, सड़े गले जैसे भी हैं, सब रख लो, भरना ही तो है बैग, क्योंकि भरा हुआ बैग ही दिखाना था राजा को। उसने ये किया। तीसरे ने ये सोचा कि चलो अब क्या राजा देखेंगे, बस भरा हुआ बैग ही तो देखना, इसलिए उन्होंने जो भी वहाँ पे बाग में कचरे वचरे थे, पत्ते वत्ते थे, वो सब भर लिया और बैग को भरा हुआ दिखाने लगे। दूसरे दिन वो राजा के पास पहुंचे तो राजा ने किसी का बैग देखा नहीं, कहा कि इन तीनों को दूर के एक स्थान पे, जो उनका कैद वाला स्थान था, वहां रख दो। एक महीने तक इसी बैग के साथ इनको वहां पे रहना है, जो भी इन्होंने रखा है वही इन्हें खाना है। अब तीनों को वहां रख दिया गया। अब जिसने अच्छे अच्छे फल इकट्ठे किए थे वो तो बेचारा उन फलों को खाता रहा और एक मास तक उसका काम बड़े अच्छे से चल गया। दूसरा जो मंत्री था उसने अच्छे फल खाए, लेकिन जब खत्म हो गए तो जो थोड़े से सड़े गले थे वो भी उसने खाने शुरू किए, क्योंकि भूख में कुछ ना कुछ तो खाना ही था। उसकी तबीयत खराब हो गई और तकलीफ होने लगी उसे। और तीसरा जो मंत्री था वो तो केवल उसने पत्ते इकट्ठे किए हुए थे ना, तो वो बेचारा क्या खाता। उसकी मृत्यु हो गई थोड़े दिनों के बाद, भूख के पश्चात। मित्रों, कहने का भाव, परमात्मा भी सृष्टि के राजा हैं और ये संसार एक बगिया के समान है। हम सब यहाँ क्या इकट्ठे कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती, ना अभी काम आते ना भविष्य में काम आते। क्या कर्म, अच्छे कर्म रूपी फल हम इकट्ठे कर रहे हैं या बुरे कर्म रूपी फल इकट्ठे कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी जो कर्म हम इकट्ठे करते हैं वही अंतकाल में हमारे काम आता है, अभी भी वही हमारे काम आता है, और ये भी कहा जाता है कि परलोक में भी वही हमारे काम आएगा। तो इस बात पे हमें जरूर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। परमात्मा ने हमें संसार रूपी बगिया में बिल्कुल खुला छोड़ा है, हम पे निर्भर करता है कि हम क्या इकट्ठा करते हैं। कई बार दोष तो हम परमात्मा को देते हैं कि तू हमारे साथ क्या करता है, लेकिन वास्तव में ये हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। तो मित्रों, अच्छे कर्मों के फल इकट्ठे करते चलें ताकि जीवन बहुत सुहावना हो। ऐसे सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। दाता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया।
कई बार भ्राता जी, कुछ लोग तो अच्छी कर्म इकट्ठे करते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो शायद अच्छे कर्मों की जो संख्या है वो थोड़ी कम रहती है, बुराइयों की थोड़ी ज्यादा हो रही है।
बिल्कुल ऐसा ही हो गया। मनुष्य को पुण्य कर्म भी इकट्ठे करने चाहिए, दूसरों की ब्लेसिंग्स भी बहुत इकट्ठी करनी चाहिए, उन्हें दूसरों का प्यार भी जीत लेना चाहिए और सम्मान भी जीत लेना चाहिए। ये सब चीजें समय पर लोगों को उनके सहयोगी बनाती हैं, और जीवन की यात्रा में जब कभी भारी दिन आ जाए तो ये सब चीजें मनुष्य को मदद करती हैं और भारीपन सरलता बदल जाता है। लेकिन आज स्थिति दूसरी हो गई है, दूसरों को देखकर यही करना है, एक परंपरा ही गलत पड़ गई है और जिससे बहुत कुछ बिगड़ता जाता है। मैं उदाहरण दूं युवकों का, आजकल एग्जाम के समय चल रहे हैं, तो मैं उदाहरण दूं युवकों का। युवकों की एक टोली खड़ी है, 5-7 फ्रेंड्स हैं, एक बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है, दूसरा गंदी गंदी बातें कर रहा है, फिल्मों की बातें कर रहा है। एक व्यक्ति बहुत जेंटिल है इनमें युवक, अब वो सोचता है मुझको तो ये सब कुछ आता ही नहीं, मैं तो पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, मुझे भी ये फिल्में देखनी चाहिए। वो भी अपना इंटरनेट खोलता है और फिल्में देखना शुरू करता है और उसके अंदर प्रवेश करती हैं विकृतियां। ये बहुत कुछ आजकल हो रहा है। दूसरों को देखकर मनुष्य वही सीख लेना चाहता है, अपने सत्य पथ से विमुख हो जाता है। ये बहुत मनुष्यों के साथ हो रहा है। सब शराब पी रहे हैं, आनंद ही आनंद है, क्या करोगे कमाई करके, पैसा है तो खाओ पियो। ये सोच के मनुष्य पुण्यों की पूंजी की तरफ नहीं बढ़ता, पाप की तरफ बढ़ता है। तो सच तो यही है कि मनुष्य को पुनः अपने को संभालना होगा और ये सब पूंजियां जमा करनी पड़ेंगी। यही हमारे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत लोगों को जो इस तरह जीवन व्यतीत करते हैं जब उनके सामने परिस्थितियां आती हैं, तब उन्हें जागृति आती है, अरे हमने जीवन में क्या क्या किया। अब जैसे उनको अपने पाप कर्म उनको खाने लगते हैं, पुण्य का खाता कम होता है, कोई साथ नहीं देता और बहुत दयनीय स्थिति में मनुष्य पहुंच जाता है।
बिल्कुल, लेकिन भ्रता जी शायद एक जागृति की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि अब यही सब कुछ हो रहा है तो व्यक्ति वही देखता है और सोचता है यही ट्रेंड है और यही करना चाहिए, यही यहाँ संसार की रीति नीति है। पुण्य कर्म या श्रेष्ठ कर्मों की जागृति नहीं है। ये पुण्य कर्म या श्रेष्ठ कर्म क्या है भ्रता जी? सारे दिन में यदि मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छे कर्म करूँ, अच्छे कर्मों का खाता जमा करूं, तो ये क्या है, कैसे किया जाए?
देखिए, जो स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं उन्हें तो जानना चाहिए आत्मा के जो सात गुण हैं, ज्ञान सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति, इन सभी को जीवन में प्रकट करना लाना, तो कर्म स्वतः ही अच्छे होंगे, वो पुण्य कर्म होंगे। मान ले प्रेम को किसी ने बढ़ा दिया तो प्रेम के द्वारा कर्म होंगे, सहयोग होगा, कटुवाणी नहीं होगी, घृणा इच्छा द्वेष रिवेंजफुल फीलिंग से कर्म नहीं होंगे, शांत आत्मा की शांति को बढ़ा दिया तो बहुत अच्छे कर्म होंगे, पवित्रता को बढ़ा दिया तो वास्तव में सारे पाप कर्म मनोविकारों के कारण होते हैं, क्रोध और अभिमान के कारण। काम क्रोध अभिमान तीन चीजें मनुष्य को पाप की ओर बहुत ले चलते हैं। इनको छोड़ने की यदि जागृति हो जाए तो पाप बिल्कुल समाप्त हो जाए और पुण्य मनुष्य करना शुरू करे। ये तो रही अध्यात्म के राहियों की बात, लेकिन एक कॉमन मैन को ये अवश्य सोचना चाहिए कि उसे सबको सुख देना है। सुख देना सबसे बड़ा पुण्य, और सुख भी देना है अच्छी वाणी के द्वारा, ये पहली चीज। दूसरा सहयोग देना। कुछ ऐसे असहाय लोग होते हैं संसार में, मैं उदाहरण दूं, मान लो एक पेशेंट है और उसको कोई भयानक रोग हो गया, डॉक्टर ने कहा लाखों रुपए खर्च होंगे, लेकिन उसके पास है नहीं, वो पीड़ित हो रहा है, वो कहीं समाज को दोष दे रहा है, वो कहीं अपने भाग्य को दोष दे रहा है, लेकिन एक डॉक्टर बहुत कम पैसा लेकर केवल जितना उसका खर्च होता है उसको ठीक कर देता है, तो ये उस डॉक्टर का बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। लाखों रुपए लेना, वो लाख रुपए उसको शायद समय पे काम नहीं आएंगे, लेकिन ये जो उस गरीब की ब्लेसिंग्स होंगी और ये जो इसके द्वारा सुख मिलेगा, ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म होगा। एक बच्चा है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, लेकिन पैसा नहीं है, बेचारा मन मार के रह जाता है, सोचता है कहाँ से उधार लूँ, उसे नहीं पता एजुकेशन पर लोन भी मिलता है, उसे कुछ पता नहीं वो कहाँ जाए। ऐसे में कोई व्यक्ति उसको मदद करता है, हमारी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे बच्चों को मदद कर, ये उनका बहुत बड़ा पुण्य होता है। ऐसे कार्य सुख देना, सहयोग देना, असहायों को सहारा देना, ये सब पुण्य है। दूसरों के दुख हरना, उन्हें अच्छे बोल बोल कर सुखद फीलिंग दे देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है।
बिल्कुल, और ये सारे कार्य सभी व्यक्ति लगभग कर ही सकते हैं, कम से कम बोल के द्वारा तो लोगों को राहत दी जा सकती है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है, कम से कम गिराने वाले बोल ना हो, ये बहुत सुंदर बात रही ब्रता जी। आइए आज जो हमारे पास मेल आए ब्रता जी उनकी ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। ये पहला मेल प्रज्ञा भावसार जी का आया है मुंबई से। ये कहते हैं कि मेरा नाम सुनीता है, मैं दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी हूँ। मुझे एक विचार बहुत परेशान करता है कि जब हम सब भगवान के बच्चे हैं तो वो हमें इस संसार में भेजता ही क्यों है, खुद ऊपर बैठकर आनंद लेता है और हम यहाँ दुखी होते रहते हैं, क्या वो हमें इस आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता?
वैसे दर्शन शास्त्र में इसका उत्तर तो इसे मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारे प्राचीन मनीषियों ने भी इस पर काफी अच्छा चिंतन किया हुआ है
जी।
सच तो यही है कि ये संसार एक विशाल नाटक है और इसमें हम सब एक्टर्स हैं और परमात्मा है इसका डायरेक्टर। अनादिकाल से सबको एक सुंदर पार्ट मिला हुआ है, पार्ट प्ले करने तो आना ही है। अगर एक्टर्स पार्ट प्ले करने से मना कर दें तो ड्रामा कैसे चलेगा, पहली तो बात ये। दूसरी चीज मैं कहूँगा, भगवान हमारा परम पिता है, हम उसके बच्चे हैं। एक बाप, अभी आप देख लीजिए, एक बाप को दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो पढ़ता लिखता नहीं, बिजनेस में साथी नहीं है बाप का, केवल घर में रहता है, सोता रहता है, टीवी देखता रहता है, पैसे खर्च करता रहता है, शराब पीता रहता है। अब बाप किसे पसंद करेगा, जो घर में बैठा निठल्ला बच्चा है या जो बहुत एक्टिव है, जो बहुत अच्छा पढ़ता है, बिजनेस में मदद करता है, तो हर बाप अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहता है, योग्य पार्ट प्ले करे वो उसके साथ, ये देखना चाहता है। भगवान भी जो हमारा परम पिता है, वो ये नहीं चाहता मेरे सारे ये बच्चे आत्माएं मेरे साथ घर में बैठे रहें शांति में। वो चाहता है मेरी ये महान आत्माएं संसार में जाएं, महान कार्य करें, दुखियों के दुख हरें, सबको सुख दें, ऐसा पार्ट प्ले करें कि सब वाह वाह करें, मेरा भी नाम रोशन हो इससे। तो वास्तव में भगवान अपने बच्चों को योग्य देखना चाहता है, योग्य बनाना चाहता है। मैं कहूंगा घर में निठल्ले बनाकर बैठा देना नहीं चाहता है। इसलिए भगवान ने हम सबको, अगर हम ये मानते भी हैं कि इस संसार में भेजा है, तो बहुत अच्छाई के लिए भेजा है, हमारी इनर योग्यताओं को जागृत करने के लिए, उनको यूज कराने के लिए भेजा है।
वहाँ बैठ के व्रता जी हम उनको मदद नहीं कर सकते कि आप जहाँ बैठे हो हम भी आपके बगल में बैठ के आपकी मदद करें।
वहाँ तो उसको मदद की जरूरत होती ही नहीं, वो सर्वशक्तिवान है और जो कुछ उसे संसार के लिए करना होता है वो केवल वही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। चाहे वो कितनी महान आत्मा हो, वो वहाँ बैठ कर कार्य नहीं करेगी, उसको यहाँ आकर ही कार्य करना है।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये आवागमन का जो चक्र है इससे हम हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो सकते, यही
हाँ,
कहेंगे।
मुक्त होने की जरूरत भी नहीं। देखिए, एक व्यक्ति को जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हो और ये कह दिया जाए 6 मास तक तुम घर में रहना, आराम फरमाना, कोई काम नहीं करना, बना बनाया भोजन मिलेगा, लेटे रहना, मौज करना बिल्कुल, तो देख लो उसका हाल 2-4 दिन में ही क्या होगा। वो परेशान हो जाएगा, अरे घर से बाहर तो निकलने दो मुझे, थोड़ा चहल पहल तो करूं, घूम के तो आऊं, फ्रेंड से बात तो करूं, मोबाइल पे ही बात कर लूं। मनुष्य आत्मा एक्टर है, वो एक्ट को ही एंजॉय करती है, एक्टिंग ही उसकी रुचि है। अगर उसको एक्ट करने से रोक दिया जाए तो शायद बोर हो जाए, उसकी सारी क्षमताएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए आवागमन से मुक्त होने की बात ही नहीं, आना और जाना इसमें ही तो आनंद है। तो भगवान भी तो इस धरा पर आते हैं, उसने वायदा किया हुआ है जब जब धर्म की ग्लानी होगी मैं आऊंगा। तो जब भगवान भी आवागमन से मुक्त नहीं है तो हमें उसकी जरूरत क्या है। ये तो मनुष्य इसलिए सोचता है कि संसार में बहुत दुख है, पत्नी पति से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, फ्रेंड्स अपने फ्रेंड से परेशान, सोचते हैं भगवान ने
जब ये यहाँ परेशानी हो जाती है, इसीलिए शायद वो गीत भगवान ने उन्होंने कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में, काय को दुनिया बनाए।
और जो आनंद ले रहे हैं वो तो कहते हैं वाह प्रभु तुमने हमें सब कुछ दिया और देते रहो, हम ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करते रहें। तो ये तो मनुष्य दुखी होकर ये बात करता है।
और वैसे ब्रता जी, यदि एक सर्वे किया भी जाए तो शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे। जैसे मैंने एक नाटक देखा था तो उसमें नारद जी ने कहा भगवान से कि प्रभु ऐसा है कि संसार में बहुत दुख है, अब सब पुकार रहे हैं, आप सबको बुला लो। तो प्रभु ने कहा कि नारद ये काम तुम ही करो, तुम ही जाओ उनको लेके आओ। अब नारद जी गए एक एक के पास, जिसके पास भी गया बोले फालतू बात क्यों कर रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो एक भी बंदा तैयार नहीं हुआ जाने के लिए।
ये सत्य है, अगर 1 करोड़ लोगों का सर्वे किया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई छोड़ो ये झंझट, बड़ा दुख है इस दुनिया में, चलो भगवान तुम्हें बुला रहा, हाथ जोड़ेगा तुम ही चल जाओ भाई, हम ही रहने दो। तो ऐसी बात नहीं, मनुष्य इस संसार में बहुत सुखी भी है, वो एंजॉय कर रहा है सब कुछ, केवल अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। जो यहाँ सुखी नहीं है वो भला वहाँ सुखी कैसे होंगे, सोचने की तो बात है। जो यहाँ उछल कूद कर रहे हैं वो वहाँ भी चैन से नहीं बैठेंगे।
कई बार बैठे जी लोगों के मन में जो ऐसे लोग हैं कि जो दुखी होकर के ये कहते हैं कि क्यों दुनिया बनाई, शायद इसलिए क्योंकि उनका भाग्य थोड़ा सा कम है। तो वो जो ज्यादा भाग्य वाले हैं उनको देखते हैं कि कुछ लोग इतने सुखी हैं, आनंदित हैं, हमारा भाग्य ऐसा है और हम बहुत तकलीफ में हैं। तो इसलिए शायद भगवान को दोष भी देते होंगे कि भगवान तुमने किसी को इतना अच्छा भाग्य दे दिया, किसी को ऐसा छोटा सा भाग्य दे दिया, इसलिए हमको इस चक्र में नहीं आना। तो ये प्रश्न भी बहुत समय से भ्राता जी चलता आया है।
सच तो यही है कि भाग्य देने वाला भगवान नहीं है, भाग्य बनाने वाला मनुष्य स्वयं है।
मतलब जिसकी हम चर्चा कर रहे थे पहले कि जो कर्म रूपी फल है जो इकट्ठा हम करेंगे।
बिल्कुल, हम अच्छे कर्म करें हमारा भाग्य श्रेष्ठ हो जाएगा, हम अच्छी मेहनत करें यही हम प्रगति के पथ पर चलेंगे। हमारे सामने हजारों उदाहरण हो सकते हैं संसार में, अगर देखा जाए एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब से बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है, एक व्यक्ति जिसको कोई नहीं पूछता था वो देश का नेता बन गया है, एक व्यक्ति जिसे कुछ नहीं आता था वो बहुत अच्छा वैज्ञानिक बन गया है। मनुष्य की अपनी मेहनत, अपनी दृढ़ता, अपना आत्मविश्वास, अपने मन की प्योरिटी, ये सब उसे श्रेष्ठ भाग्य का धनी बना देते हैं।
बिल्कुल भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि आवागमन तो इस चक्र से कोई छूट नहीं सकता, तो जो मोक्ष के लिए साधना कर रहे हैं, लंबे समय से कई साधक ऐसे हैं, सन्यासी ऐसे हैं जो जंगलों में, गुफाओं, कंदराओं में साधना कर रहे हैं कि बस हमें इस आवागमन में नहीं आना है, मोक्ष को प्राप्त कर लेना है, तो उनको ये जो उनकी कामना है क्या पूरी नहीं होगी?
देखिए, कामना तो पूरी होगी, लेकिन फॉर टाइम बीइंग। ऐसा नहीं कि वो कभी भी नहीं आएंगे। ये जो मुक्ति का काल है, ये सबके लिए अलग अलग है। कोई सतयुग त्रेता दो युग तक मुक्त रहते हैं, बाकी सब देव स्वरूप में इस धरती पर पार्ट हो जाते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो चारों युगों में लगभग मुक्त हैं, बिल्कुल कल्प के अंत में इस धरा पर पार्ट बजाने आती हैं, फिर मुक्ति धाम में चली जाती हैं लंबे काल के लिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी मुक्ति को, मोक्ष को एक सर्वोच्च स्थिति मान लिया गया है, इसलिए बहुत सारे तपस्वी उसका प्रयास करते हैं। लेकिन मैं अगर सच कहूं तो बहुत सारे तपस्वियों ने ये बात छोड़ दी है, सब अपने धंधों में लग गए हैं, फिर से शीशे बना लिए, उनको उपदेश दे रहे हैं, सोशल वर्क में लग गए, अच्छे कार्यों में भी लगे हैं, बुरों में नहीं। लेकिन मुक्ति के लिए तो बहुत गहन साधना की जरूरत पड़ती है। जब तक मनुष्य विकारों से मुक्त न हो, जब तक मनुष्य का चित्त निर्संकल्प न हो, तब तक वो मुक्त हो ही नहीं सकता। और ये स्थिति बहुत ही बड़ी स्थिति है, इसलिए लाखों साधकों में भी कोई एक इसका प्रयास करता है, उनमें से बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। इसलिए मुक्ति की कामना तो अच्छी है, पर यहाँ दुखों से मुक्त होना, विकारों से मुक्त होना पहले ये प्रयास होना चाहिए।
बिल्कुल, और इससे मुक्ति शायद ज्यादा आवश्यक है, ताकि संसार में रहते हुए भी हम वो उस मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकें। दादा जी, दूसरा मेल हमारे पास आया है करनाल से, सुदेश शर्मा जी हैं और ये कहते हैं कि मेरा नाम सुदेश है, मैं कई वर्षों से नींद की समस्या से पीड़ित हूँ, कुछ समय से मैं ब्रह्मा कुमारीज में जा रहा हूँ, मेडिटेशन सीख रहा हूँ, मैं 2-3 नींद की गोली खाकर ही सोता हूँ, मैं सुख से सोना चाहता हूँ, गोलियाँ छोड़ना चाहता हूँ, योग मैंने सीखा तो है पर योग मुझे बहुत कठिन लगता है, क्या करूँ? सुदेश जी,
हाँ देखिए, ये एक डिप्रेशन की स्थिति भी होती है, बहुत लोगों को डिप्रेशन और अनिद्रा दोनों समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों को केवल अनिद्रा की समस्या होती है, रात को जैसे ही वो सोने जाएंगे ब्रेन बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और नींद खत्म ही हो जाती है, बहुत फ्रेश हो जाते हैं, थके हुए भी जाकर लेटेंगे बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, फिर घड़ी की ओर देखते रहते हैं, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, किसी को 4 बजे नींद आती है, किसी ने बताया था मुझे तो 4 बजे सवेरे नींद आती है, जब प्रभु मिलन का समय होता है तब इनके सोने का समय होता है, और फिर गृहिणी है तो सोएंगी कब तक, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, तो एक मानसिक रूप से बहुत ही खतरनाक सी स्थिति बन जाती है। क्योंकि नींद का सुख भी तो बहुत बड़ा सुख है, ये तो वो बता सकते हैं जिनको नींद नहीं आती, जिनको बहुत ज्यादा आती है वो तो सुखों से भी परे निकल जाते हैं। तो मैं कुछ बातें सजेस्ट करना चाहूंगा
जी,
बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं लोगों के, हमें बताते रहते हैं लोग कि डिप्रेशन और अनिद्रा बहुत ओपिनली, बहुत क्लियरली हमें जान लेना चाहिए कि ये मनुष्य के अति विकर्मों का परिणाम होता है। तो एक अच्छे मनुष्य को अब सोचना चाहिए, मुझे पुण्य कर्म करने हैं, मुझे सबको सुख देना है, जितना हम अपना पुण्य का खाता बढ़ाते हैं वो पाप का खाता हल्का होने लगता है और हमें कहीं ना कहीं सुख चैन मिलने लगता है। होता क्या है, देखिए मेडिकल साइंस इस बात को ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकती है, पर मैं एक सिंपल भाषा में कहूंगा कि पाप कर्म ब्रेन को अब हाइपर एक्टिव रखने लगे हैं। हाइपर एक्टिव होने से नींद नहीं आती है, किसी के विकर्मों ने उसके ब्रेन में कई चीजें ब्लॉक कर दी हैं, तो डिप्रेशन होने लगा है। अब हमें ये दोनों चीजें खोलनी है। नो डाउट जिसको डिप्रेशन है या नींद नहीं आती, उसका ब्रेन तो बहुत वीक होने लगता है, उसकी कंसंट्रेशन तो होगी नहीं, वो योग लगाना चाहेगा, मेडिटेशन करेगा, मन और भारी हो जाएगा,
इनसे भी नहीं हो रहा है। हाँ, जी,
होगा ही नहीं, मन भारी होने लगेगा, इसलिए इनको कुछ सुंदर चिंतन करना चाहिए, अच्छे गीत सुनेंगे, कमेंट्री लगा दें, योग की बहुत सारी हैं, उनको सुनते सुनते उसका आनंद लें। और एक स्थूल सा तरीका भी अपना सकते हैं, जब ये रात को सोने जाएं तो कोई अच्छी क्लास जो इनके मन पसंद हो वो चला दें, बाबा के बहुत सारे महावाक्यों की सीडी बनी हुई है वो चला दें, उसको सुनते सुनते इनके मनपसंद विचार मिलेंगे ना, रिलैक्स होने लगेगा ब्रेन और इनको नींद आ जाएगी। दूसरी चीज मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसके बहुत गुड इफेक्ट रहे हैं, सवेरे उठते ही जब भी कोई उठे वो 108 बार लिखे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसे ब्रेन को शक्तियों के वाइब्रेशंस जाते हैं। तो रात को सोने से पहले मान लो 10 बजे फ्री हो गए तो शांति से बैठकर मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार लिखेंगे
जी।
लिखते लिखते बहुत गुड फीलिंग होगी, स्वीकार कर लें मैं भगवान की संतान हूँ, मैं महान हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। फिर लिखें विद गुड फीलिंग। रात को सोने से पहले ठंडे पानी से स्नान भी कर लेना चाहिए, नॉर्मल पानी से, उससे भी बहुत चीजें ठीक होती है। एक स्थूल चीज मैं और बताऊं, लेट कर पेट के बल किसी से अपने स्पाइन के दोनों ओर के पॉइंट्स दबवा लेने चाहिए 5-7 मिनट, वो रिलैक्स हो जाते हैं। कईयों की ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके चारों ओर भी टेंशन हो जाती है, वो खिंचाव हो जाता है नस नाड़ियों में, उसको धीरे धीरे दबाएंगे 5-7-10 मिनट, रिलैक्स होंगे और नींद आने लगेगी। कईयों को हल्दी का दूध पीने से अच्छी नींद आने लगती है। टीवी बिल्कुल नहीं देखेंगे सोने से पहले, ये ध्यान रखना है। एक और चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको केवल जो गहरी फिलोसोफी को जानते हैं, कर्मा फिलोसोफी, वो समझेंगे कि हमने पूर्व जन्मों में यदि बहुत लोगों को कष्ट दिया है, सताया है, वो हजारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, तो उनके निगेटिव वाइब्रेशंस तब से ही हमारे साथ जुड़े रहते हैं, चाहे 1000 साल हो गए हों, वो जुड़े रहते हैं। अभी बहुत मनुष्यों के साथ हजारों लोगों के निगेटिव वाइब्रेशंस जुड़े हैं, वो उनको डिप्रेस करते हैं, वो उनको सोने नहीं देते। इसलिए सच्चे मन से सवेरे उठते ही इन आत्माओं से क्षमा याचना कर लेनी है। मैंने आपको अज्ञान व स्वीकारों व कष्ट दिया था, अब मैं सच्चे मन से आपसे क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ, आप मुझे क्षमा दान दें और प्रसन्न हो जाएं, तो उनका मन हल्का हो जाएगा। ये बड़ी सूक्ष्म वाइब्रेशंस की गति है, और हमें जो निगेटिव एनर्जी उनसे आ रही है लगातार, वो कट जाएगी और हम रिलैक्स होंगे, और बहुत जल्दी डिप्रेशन भी दूर होने लगेगा, नींद भी अच्छी आने लगेगी।
बिल्कुल दत्ता जी, और जैसे ये कह रहे हैं कि 2-3 नींद की गोली खाते हैं, क्या ये गोली लेते रहें और ये अभ्यास करते रहें, या अभ्यास के साथ ये गोली की जरूरत
है? देखिए, इनको ऐसा करना है, पहले 7 दिन ये अभ्यास करें और 7 दिन के बाद आधी आधी गोली कम करना शुरू कर दें
जी,
तो 5-7 दिन में इनकी पूरी गोली छूट जाएंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नींद की गोली तो ब्रेन को एक्चुअली डल करती है। हर व्यक्ति बताता है कि जब वो सो के उठते हैं तो उनका हाल कितना बुरा होता है, ड्रोजीनेस, बैड फीलिंग, जैसे कुछ मजा ही नहीं है जीवन में।
लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी
चारा नहीं रहता, इसलिए बेचारों खानी पड़ती है। तो गोली से भी छूटे और गालियों से भी छूटे, बस हमारी ये शुभ भावना है, ये प्रभु प्रेम में मस्त होकर
जी,
और उसकी गोद में रोज विश्राम करें, और संसार में जो ये समस्या बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, निजात पाने के लिए मैं सभी को कहूंगा पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाएं, इन विषय विकारों से मुक्त हो जाएं, और अब वो करें जिससे तुम्हारा आत्म थान हो।
बिल्कुल, कुछ ऐसे अनुभव आ रहे हैं भ्राता जी आपके पास, जो अभ्यास आपने बताए हैं उससे लोगों को अच्छी नींद आने लगी है, गोलियां छूट गई हैं?
हाँ, ऐसे अनुभव तो प्राय चलते फिरते भी लोग बताते रहते हैं कि हम सो नहीं पाते थे, हम बहुत परेशान रहते थे, ये सब चीजें हमने की, अब हमारी वो समस्याएं समाप्त हो गई हैं। कम से कम मैं समझता हूँ 1000 अनुभव तो लोगों को प्राप्त हो ही गए होंगे, परेशान मन को ठीक करने के 1000 तो मैं लगता हूँ कम से कम हो ही गए हैं।
चलिए, मतलब बहुत आपको दुआओं का बहुत खाता जामा आपका होता चला जा रहा है, 1000 लोग जो नहीं सो पाते थे वो सोने लगे हैं, सुदेश जी को भी अच्छी नींद आएगी, ऐसी हम कामना करते हैं। रहता जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जहां से हमने शुरुआत की थी पूरी चर्चा उसी पे रही, भ्राता जी अंत में भी कह रहे थे यदि नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं या समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्म ही पीछा करते रहते हैं। वो कहते हैं ना, मान लीजिए आपने 1000 रुपए किसी से ले लिया, 1 लाख रुपए ले लिया, 1 करोड़ रुपए ले लिए, अब आप कहीं भी भाग जाओ वो बंदा तो आपको ढूंढता ही रहता है कि जिसको मैंने पैसे दिए हैं वो कहाँ छुप के बैठा है, मुझे अपने 1 करोड़ लेने हैं। कर्मों के साथ भी बहुत ही सूक्ष्म रूप से यही चीज है मित्रों, कि हमने जो कर्म किए हैं हमारे साथ लगातार लगे रहते हैं, यदि हमने बुरे कर्म किए, किसी को तकलीफ दिया है, कष्ट दिया है, मारा है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एक वाइब्रेशन जो भ्राता जी हमेशा कहते हैं हमारे पीछे रहते हैं, जो हमें अस्थिर कर देते हैं, अशांत कर देते हैं या हमारी नींद को भी उड़ा ले जाते हैं। तो बात वही रही, श्रेष्ठ कर्मों की ओर बढ़ें। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये हमारे अपने कर्मों की बात है। जीवित भी रहें लोगों के दिलों में और साथ ही अपने श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से सुख भी प्राप्त करते रहें, क्योंकि जब हम सुख देते हैं दूसरों को, रिटर्न में हमें सुख ही प्राप्त होता है। तो आप अच्छी नींद लें और साथ ही श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलें, यही हमारी शुभकामना है। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।